देखो हम सब एक आत्मा है ना, हम सब एक आत्मा। आज आपसे थोड़ी सी बात कर रहा था कि आप ये फाइनल बात है जो कि आप समझ जाएं तो एकदम क्लैरिटी अंदर आ जाएगी। हम एक आत्मा है। अब आपको अभी तक समझ नहीं आया कि बुद्धि क्या है, मन क्या है। समझ में आया क्या बुद्धि और मन क्या है? क्या ना आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। वो कहां पर होती है आत्मा में? आत्मा तो एक बिंदु है छोटा सा, तो कहां पर होती है आत्मा में? कहां होती है मन बुद्धि संस्कार? बिंदु के अंदर होती है, बिंदु के बाहर होती है, बिंदु के नीचे होती है, क्या होती है, या बिंदु के ऊपर होती है? कौन आंसर देगा इसका? आत्मा में मन बुद्धि संस्कार कहां होती है? है उससे आत्मा बना है? कैसे बना उससे आत्मा? आप क्या समझते हैं? अविनाश आप तो बहुत पुराने हैं, बताओ। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है, आत्मा के बाहर है, कि आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार है? आप कह रहे ना आत्मा मन बुद्धि संस्कार मतलब एक ही इक्वल है। आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर कहां? आत्मा तो एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, बहुत छोटी सूक्ष्म, तो उसमें मन बुद्धि संस्कार कहां होंगे? हाँ, तो मन और बुद्धि की लड़ाई, वो कहते हैं आपस में दोनों अलग अलग हैं, दोनों लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी, ये गुड़िया बताएगी, ये गुड़िया बैठी ना, ये आप बताओ मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है कि बाहर है? हाँ, कहां पर है? अंदर के बाहर? अंदर ही है, आत्मा के अंदर है। चलो ये बात मैं आपसे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको सही ढंग समझ गए तो मतलब बहुत आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी ना। तो आत्मा बुद्धि क्या चीज है? आत्मा एक बिंदु है। जब आत्मा बाहर है, शरीर के बाहर है, तो उसमें से जो आत्मा से क्या निकलते हैं बेसिकली? आत्मा साथ ये एनर्जी निकल रही है साथ, जैसे सूरज से क्या निकलता है? गर्मी और लाइट निकलती है ना। बेसिकली सूरज क्या है? व्हाट इज सन? सन इज नथिंग बट जलती हुई गैसों का एक समूह है, है ना। गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, 75% इसमें हाइड्रोजन है, 22% हीलियम है, और बाकी 3% बाकी मिक्स गैसेस है, थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ी नाइट्रोजन, थोड़ी और डिफरेंट गैसेस हैं। तो ये सूरज क्या है? बेसिकली गैसेस का समूह है ना, ग्रुप ऑफ गैसेस का एक ऐसे है, इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। और गैसेस क्या बेसिकली जलती नहीं है, फिशन और फ्यूशन होता रहता है मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, हीलियम मॉलिक्यूल्स का, फिशन माना जुड़ते रहते हैं मॉलिक्यूल्स और टूटते रहते हैं, तो उससे ये एनर्जी पैदा होती है, जो आपको आग और लाइट पैदा होती है ना, उससे पैदा होती है। और सूरज के बाहर की जो सब इधर लाइट और आग इकट्ठी हो जाती है, इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो हमें कोई गैस नजर आती है क्या सूरज के अंदर से? हमें सिर्फ फोटोस्फीयर नजर आता है, गैस तो अंदर जल रही है, राइट। और उसकी किरणें फिर हमको, जो ये फोटोस्फीयर जो बनता है, इसकी किरणें हमें यहां तक, धरती तक पहुंचती है, ठीक बात है। तो इस तरह से ये जो है सूरज है, ऐसी आत्मा एक बिंदु है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, जिसमें से सात एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। किंतु जब आत्मा शरीर के बाहर है तो निकलती है क्या उसके अंदर से? जब आत्मा ऐसे उड़ रही है हवा में, आ रही है तो उड़ती, तो उसमें से गैस निकल रही होती है क्या? या सपोज ये ज्ञान निकल रहा होता है उसमें से, पवित्रता शांति निकलती नहीं है, बल्कि अंदर ही होता है। जैसे आप यहां आए ना, जैसे आप शांतिवन में आए तो क्या कैसे आए? एक पे कपड़े थे, एक कंधे पर एक कपड़े पे, एक हाथ में वो था ब्रश, दूसरे हाथ में टूथपेस्ट, ऐसे कैसे आए थे? सब बैग में पैक था ना। और जब आप आ गए कमरे में तो क्या किया? फिर आपने चीज निकाल के जहां जाए इसकी आवश्यकता वहां रख दिया और यूज करने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में बोलते हुए आए थे क्या? क्योंकि तो यहां पर आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना या जो भी बोलना चलना शुरू किया, राइट। तो जहां जगह हो वहां करके बोलना शुरू करते हैं। ऐसे ही आत्मा जो है वो जब शरीर के बाहर है तो एकदम कॉम्पैक्ट है, बिंदु, ज्योति बिंदु, क्योंकि जब शरीर में प्रवेश करती है तो पांचवें महीने प्रवेश करती है, फिफ्थ मंथ में ही प्रवेश करती है, और पांचवें महीने पर प्रवेश करने के बाद वो अपनी एनर्जी, सातवें एनर्जी को निकालना शुरू करती है, राइट। और सातवें एनर्जी को निकालना शुरू करती है, जो ये सात एनर्जी निकलती है उसका जो उसके एकदम आसपास, आत्मा के एकदम आसपास एक कंसंट्रेटेड एरिया बन जाता है, उसको हम कहते हैं वही बुद्धि है। बुद्धि क्या चीज है? जो एनर्जी निकल रही है वो जो आत्मा के आसपास इकट्ठा हो गया, जैसे मैंने बताया सूरज के आसपास आग और गर्मी, लाइट और गर्मी इकट्ठी हो गई, उसको हमने क्या कहा? फोटोस्फीयर। वैसे तो आग गर्मी का असर दूर दूर तक जा रहा है, उसका जल यहां रही है किंतु असर खाली यहां नहीं है, दूर तक है ना, किंतु जो एरिया कंसंट्रेटेड है आसपास उसको हमने क्या कहा? फोटोस्फीयर। वही हमको नजर आता है एक गोले के रूप में। ऐसे ही ये बुद्धि है जहां पर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां इकट्ठी हैं। तभी कहते हैं ना, ज्ञान कहां होता है बताइए? ज्ञान कहां होता है? कहां कहते हैं ज्ञान? बुद्धि में कहते हैं ना। पवित्रता कहां होती है? बुद्धि में। आत्मा में नहीं, आत्मा में तो होती है पर होती कहां है, मतलब कहां से यूज करते हैं? शांति कहां होती है? वो भी बुद्धि में होती है। प्रेम कहां होता है? वो भी बुद्धि में ही होता है। और सुख कहां होता है? वो भी बुद्धि में ही होता है, है ना। आनंद कहां होता है? वही बुद्धि में ही होता है। और शक्तियां कहां होती है? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की, सहयोग करने की शक्ति कहां है? बुद्धि में ना। तो बुद्धि को दिल भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं। कॉन्शियंस समझते हैं? कहते हैं ना भाई, मेरा दिल, कितना भी पापी आदमी होगा ना वो कहेगा मेरा दिल नहीं मानता। क्या कहते हैं? मेरा दिल नहीं मानता। मेरा मेरा कितना भी कैसा व्यक्ति भी हो वो क्या कहेगा? मेरा दिल नहीं मानता। क्यों क्यों कहता है वो ऐसा? मेरा दिल नहीं मानता। गलत काम करने को मेरा दिल नहीं मानता। डाकुओं के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, है ना, उन प्रिंसिपल के अनुसार वो कार्य करते हैं, है ना। तो जो अंदर गहरे दिल में समा, गहरा दिल माना ये दिल, है ना, बिल्कुल आत्मा जहां है उसका एकदम जो एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, उसमें ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है। बाकी आसपास भले गंदगी आ गई किंतु आज भी हर इंसान के अंदर कॉन्शियंस है, उस कॉन्शियंस के अनुसार वो आदमी डिसीजन लेता है। नहीं, कई बार हमारी कॉन्शियंस भले हमें किसी व्यक्ति के असर में आकर के, वातावरण के संग में आके या लोगों के संग में आकर के हम लोग गलत काम कर लेते हैं, हमसे बड़े कुछ कह देते हैं, या हमसे जो जहां हम काम करते हैं वो हमारे बड़े होते हैं, हमें प्रेशराइज करके हमसे गलत काम करा लेते हैं, किंतु बाद में क्या करते हैं? जब कॉन्शियंस अपने आप को कहती है तुमने गलत किया तो क्या होता है? बड़ा पश्चाताप होता है ना। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं गलत काम करने के बाद, सुसाइड कर लेते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे लड़कियां जैसे होती हैं, उनके साथ गलत काम होता है तो क्या करती हैं? सुसाइड कर लेती। क्यों? कॉन्शियंस अंदर से खाती है कि मैंने गलत काम क्यों किया। नहीं, गलानी होती ना अपने अंदर, मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं इतने अच्छे परिवार का हूं, इतने अच्छे परिवार क्यों, तो मेरे साथ ऐसा हो गया या मैंने ऐसा गलत काम कर लिया। तो अंदर से कौन है? ये आपका चेक है अंदर। आज भी वो चेक जिंदा है, ठीक है, आज भी वो लाइट है जो हमको गलत ठीक बताती है। जैसे पहले जो मैंने आपको कहा, अपने आप से पूछो मैं कौन, तो मैं कौन किसने बताया आपको? मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। नहीं तो सारा दिन तो बोलते रहते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बोलते रहते हैं ना सारा दिन। नहीं सरदार जी, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अपने आप को सारा दिन बोलते हैं ना। किंतु जब अपने आप से गहरी बात की तो क्या पता लगा? मैं तो ये गहरा माना क्या? अंदर जाओ, मैंने कहां जाओ? यहां जाओ, अपनी कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानो। क्या बोलते हैं? अपनी अंतरात्मा, अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा मैं कौन हूं, मेरा कौन है। क्योंकि आज भी वो नॉलेज अंदर है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ठीक है डॉक्टर शारदा, तो ये है बुद्धि। पर बुद्धि के भी तीन हिस्से होते हैं। बुद्धि के तीन हिस्से कौन से होते हैं? पहला हिस्सा तो दिल है, एकदम इसके अगर बाहर देखें अगर हम तो ये दिल है एकदम शुरू शुरू में। उसके बाद विवेक है, और विवेक के बाहर चित्त है। चित्त माना पहले है दिल, फिर है विवेक, फिर है चित्त। तो पहले जो दिल में, जैसे मैंने कोई बात कही आपके दिल में लगा बहुत अच्छी बात लगी, किंतु उसके बाद विवेक उसको रीजनिंग करेगा। कोई बात तो एकदम अंदर, अगर हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे नेचुरल नेचर के अनुसार, हमारा नेचर मान, नेचर कोई गुस्सा करने वाला नेचर नहीं, अंदर गुस्सा तो है ही नहीं, दिल में तो गुस्सा नहीं है। कहते ना मेरे मुख से निकल गया, मेरे दिल में ऐसा नहीं था। कई बार ऐसे हम बोलते हैं मेरे दिल में ऐसा नहीं था, किंतु क्या हो गया? मेरे मुख से निकल गया, है ना। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता किंतु हो गया। मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बच्चे को मार देते हैं, थप्पड़ लगा देते, बाद में क्या करते? नहीं बेटा मैं तो ऐसे नहीं, मैं ऐसे कभी भी नहीं सपने में सोच सकता तुमको मैं थप्पड़ मारूंगा, किंतु दिल में तो मुझे इतना प्यार है मैं अपनी जान तुम्हें दे दूंगा, किंतु बस ऐसा हो गया, तुमने ऐसा किया ना, गुस्सा आ गया मेरे को, मतलब अंदर का रूप नहीं था वो, बाहर का रूप था, राइट? ऐसा होता नहीं होता? तो दिल में भी बच्चा कई बार आपसे गलत बोल देता है, किंतु दिल में उसके नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप से गलत बोलूं, राइट? तो अंदर दिल है, फिर उसके बाद विवेक है, विवेक में ना रीजनिंग पावर है ना, रीजन का, रीजन आउट करते हैं कि नहीं कोई बात भाई ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। एक बार बात दिल में लग भी जाती है, कुछ बातें दिल में फिट हो जाती है, कुछ बातें होती है दिल में नहीं जाती है, वो रीजन करते हैं। और रीजनिंग के बाद चित्त है, चित्त माना, चित्त में जैसे आप ना कंप्यूटर में ना कोई चीज आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आप सेलेक्ट, टाइप करने के बाद क्या करते हैं उसको सेट करते हैं, कुछ करेक्शन करने के बाद क्या करते हैं फिर आप, फिर स्टोर क्लिक की दबाते हैं ना, फाइल बनाते हैं, फिर स्टोर क्लिक की दबाते हैं। तो चित्त एक जैसे एक तरह का स्टोरिंग फाइल है, स्टोर करने के लास्ट बटन है वो। उसके बाहर क्या है? उसके बाहर मन है। मन के चार पार्ट होते हैं, सबसे पहले स्मृति है, मेमोरीज, फिर एटीट्यूड्स हैं, फिर इमोशंस हैं, और फिर थॉट्स हैं। तो जब चित्त में जब रिकॉर्ड हो गई चीज, चित्त से फिर मेमोरी में रिकॉर्ड होती है, फिर मेमोरी में रिकॉर्ड होती है, ठीक है? अच्छा, जो ये जो जहां आत्मा मैंने बताई आपको, आत्मा जहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्ट जंक्शन पे बताया ना, डायग्राम बना के बताया था, तो वहां पर ही एक्चुअली ऐसे अगर आप स्टडी करें हाइपोथैलेमस को। हाँ चौधरी साहब, सीधे होके बैठ, सीधे। जब उसी जगह पर कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस है जो हाइपोथैलेमस के आसपास, दे आर द रियल सॉर्ट ऑफ, जहां पे सही मायने में डिसीजन मेकिंग पावर है। हम स्टडी करते हैं ना, जैसे एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, तो वहां पर ही जो न्यूक्लियस है तो सारी सारी वहां रीजनिंग आउट होती है पूरी, मतलब वो ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें जरा, वहां बायोलॉजिकल क्लॉक भी वहीं पर है, जो बताया ना बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक थर्मोस्टेट है वहां पर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम 37 रहना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, भले हम गर्मी में जब धूप में जाते हैं ना तो हमारा टेम्परेचर 45 नहीं होता, 45 होता है क्या हमारा टेम्परेचर बाहर? 45 है हमारा, 45 होता है क्या बाहर? 9 डिग्री टेम्परेचर हमारा, 9 डिग्री हो जाता है क्या बॉडी का? हमारा 37 रहता है। तो 37 कैसे रहता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक थर्मोस्टेट लगा है, वो एक्यूरेट टेम्परेचर 37 बाहर के वातावरण से अपने ऐसा ब्लड फ्लो को सेट करता है अंदर से, ताकि बॉडी में टेम्परेचर हमारा 37 ही रहे, 36 नहीं 35 नहीं हो जाए, ठंडी में 35 हो जाए और गर्मी में 40 हो जाए, ऐसा होता है क्या? 40 माना 108 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, ऐसा होगा क्या? 107 डिग्री हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो अंदर थर्मोस्टेट भी यहीं लगा हुआ है। तो ये जो है, ये सारे जो बड़े फाइन जो सेंटर्स है ना, वो सब यहीं पर लोकेटेड है। तो पहले चित्त में गया, चित्त से फिर मेमोरी में गया, फिर जैसी मेमोरी, जैसी स्मृति होती है फिर वैसी वृत्ति, फिर वैसा एटीट्यूड होता है, फिर जैसी वृत्ति होती है वैसी भावना होती है, इमोशंस, फिर जैसी भावना होती है फिर वैसे संकल्प चलते हैं, वैसे विचार चलते हैं, ठीक है? और उसके बाहर हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। इसमें पहले तो 5 सेंसेस हैं हमारी, आंख है, कान है, नोज, माउथ एंड स्किन, ठीक है? इसके बाद 8 अंग हैं, पहला ब्रेन है, दूसरा इम्यून सिस्टम है, फिर हमारे लंग्स हैं, फिर हमारा हार्ट है, फिर हमारा लीवर और प्लस जीआई ट्रैक्ट आते हैं, लीवर और आते, उसके बाद हमारे हार्मोन्स हैं, और फिर हमारी बोन्स एंड ज्वाइंट्स है ना, मसल्स एंड ज्वाइंट्स, और लास्ट में हमारा जो अंग है वो कौन सा अंग है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब स्वेट ग्लैंड्स प्लस किडनीज, ये हमारी बॉडी में 8 अंग है, ठीक है? ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है। अच्छा, ये ही सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर वाला जो नजर नहीं आता ना, आत्मा बुद्धि और मन जो है ना, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। तो 3 चीज है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। आत्मा जो है, आत्मा के हम कहते हैं ना, आत्मा के कितने कपड़े होते, जैसे कहते हैं ना भाई हमारे शरीर के कितने कपड़े, शरीर में हम कितने कपड़े पहनते हैं, यूजली शरीर में कितने कपड़े पहनते हैं? 2 अंडर वाले, अंडर गारमेंट्स होते हैं, और 2 बाहर वाले, और 1 जराब पहनते हैं, मतलब नॉर्मली हम 5 पहनते हैं ना, ऐसे ही आत्मा के कपड़े भी 5 ही हैं। एक तो बुद्धि हो गई, एक स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, 5 कपड़े हो गए ना, तो 5ों गंदे हो गए ना हमारे, है ना? 5ों कैसे हो गए गंदे? धोने के लिए कौन आता है? धोबी कौन है? इंटरनेशनल धोबी कौन है? ऐसे एक फिल्म थी ना, उसमें कहा था इंटरनेशनल फकीर, है ना, है ना? एक फिल्म थी ना उसमें इंटरनेशनल फकीर एक गाना था ना, आंखें फिल्म में था ना, इंटरनेशनल फकीर आया है ना, था अनिल भाई याद आया ना? इंटरनेशनल फकीर आया, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे है ना, इंटरनेशनल फकीर आए है ना ऐसे तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल धोबी कौन है ना, कपड़े धोने वाला नहीं, आत्मा है कपड़े धोने वाला है ना। आत्मा कपड़े कौन धोता है, कौन से कपड़े धोता है, बुद्धि, जो गंदी बुद्धि होगी ना अभी हमारी, हमारी बुद्धि कैसी हो गई अभी, गंदी, और मन भी कैसा हो गया, हमारी स्मृति कैसी हो गई, गंदी, पुरानी पुरानी बातें याद करो ना जैसे कोई बात, तो गंदी, बहुत गंदगी भरी पड़ी है अंदर ना, किचड़ा भरा पड़ा है जी। बताता हूँ वृत्ति कैसी हो गई है, एटीट्यूड कैसा हो, गंदा, इंसानों वाला एटीट्यूड हमारा नहीं है अभी, इंसानों वाला एटीट्यूड है क्या, इंसान पहले कैसे होते थे, रात को आपके घर में कोई आता था अनजान आदमी कि मैं रास्ते में से जा रहा था, अंधेरा हो गया, आइए आइए प्लीज हम आइए हमारे घर में ठहरिए, आइए खाना खाइए, रात को 11 बजे भी आए तो उसको खाना देंगे, आप ठहरिए और आराम से उसको खाने को देंगे, फिर सुलाएंगे, सुबह बड़े आराम से उसको प्यार से उसको विदा करेंगे है ना। और आज आपके घर में कोई 11 बजे आ जाए तो, बाहर का बंदा तो छोड़ो, अंदर कोई आपका अपने घर वाला ही कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या करेंगे, और कोई बाहर वाला कहे तो क्या होटल समझ रखा गया, क्या बोलेंगे उसको आप, जाओ होटल में जाओ, हमारे घर में तो बहु बेटियां रहती है ना, मतलब वो समय और आज समय क्या हो गया मुझे बताओ। तो इंसान में इंसान वाला एटीट्यूड है क्या, अभी इंसान वाली भावना है क्या, इंसान वाले विचार है क्या, नहीं ना। तो हमारी पांचों चीजें गंदी हो गई है ना, तो ये पांचों चीजें गंदी क्यों हो गई है, और ये आत्मा से सातों एनर्जी निकल रही है और इनको बॉडी की हर सेल में जा रही है, कि तो जाएगी कैसे, निकली यहां से, एक तो बुद्धि बीच में रास्ता पड़ती है, रास्ता पड़ता है बीच में बुद्धि का, और फिर बुद्धि, चलो बुद्धि मान लो भरा भी हुआ, अच्छी बात भरी हुई है बुद्धि, मान लो अभी मलिन नहीं भी हुई है, किंतु बीच में तो पहले स्मृतियां पड़ती हैं, वो एनर्जी यहीं ब्लॉक हो जाएगी। अभी स्मृति कहां है, ज्ञान के लिए स्मृति कहां बची हुई है, जैसे हम बात कर रहे थे ना अशोक मनमाना जी, कहते मैं नहीं मानता है ना, मैं नहीं मानता आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में है ना, क्योंकि अंदर स्मृति में भरा हुआ ना, वो पुरानी बात भरी हुई है जो बचपन से सीखी, माँ बाप से सीखी, या किताबों में पढ़ी या जर्नल्स में पढ़ी, वो अंदर भरी हुई है कि आत्मा परमात्मा तो ऐसा है, वो स्मृति भरी हुई है। अब परमात्मा के बारे में नहीं, परमात्मा खुद आगे कह रहा है मैं आपको बोल रहा हूं, तो क्या बोलते, मैं नहीं मानता आपको है ना, क्योंकि अब मान लीजिए आप, मैं सतीश गुप्ता हूं ना, और आपने सतीश गुप्ता के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, ठीक है, आपने सीडी भी, फोटो नहीं देखी किंतु उनकी सीडी भी सुनी है और बहुत सारी बातें देखी हैं, बहुत सारी उनके बारे सुना होगा, ठीक है। अब सतीश गुप्ता आपके सामने आ गया कि जो आपने सुना है वो गलत सुना हुआ है, क्योंकि उसमें कॉपी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, उनकी बातचीत में चेंज कर दिए, क्योंकि अब सतीश गुप्ता खुद आके बोलता है आपसे कि मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, आप कहते मैं नहीं मानता आपको, आप सतीश गुप्ता, सतीश गुप्ता तो ऐसा ऐसा बोलता था, ठीक है, नहीं ऐसा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब रियल को आजकल तो अनरियल तो बनाना बहुत सहज है ना, आप और अनरियल को रियल बनाना बहुत सहज है, आज कंप्यूटर में आप कुछ भी कर सकते हो ना, अब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें रिकॉर्ड में कुछ भी हेराफेरी कर सकते हैं ना आप, अभी आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन करके ना इस तरीके में दूसरा सिर लगा सकते हैं, अभी कंप्यूटर में फैसिलिटी है इनके पास, नहीं ऐसी है, आजकल ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि चेहरा ऐसा, प्रसाद भाई ठीक बात है ना, लगा सकते, दूसरा सिर लगा सकते हो ना, तो आजकल तो कंप्यूटर वाले कुछ भी कर देते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी कर सकते हैं है ना, है जी, हाँ कुछ नकली दिखा सकते हैं ना, आवाज किसी की बोले किसी कोई और है ना, तो ऐसा हो जाता है ना, तो ये क्या करें, हाँ मुझे पता, मेरा को इसमें नकली, मेरे मूछे लगा देंगे, मैं बिना मूछ का मूछ वाला बना देंगे ना, कुछ भी कर देंगे। तो ये है इंसान, तो ये सूक्ष्म शरीर है, एक्चुअली मन है सूक्ष्म शरीर, मुझे बताया ना आपको ऊपर जाना है, परमात्मा के पास जाना है ना, तो परमात्मा के पास कौन जाएगा, सूक्ष्म अवतार में कौन जाएगा, ये मन जाता है, हम किससे जाते हैं, मन और बुद्धि से जाते हैं, मतलब वो सूक्ष्म शरीर ये है, जब मन में गंदगी भरी हुई है तो वो क्या है, घोस्ट है, शरीर तो यही छूट गया ना, बाकी क्या बचा क्या, जैसे मैंने आपको उस दिन अपना अनुभव सुनाया, शरीर तो मेरा नीचे पड़ा था, मेरा हाथ यहां रखा था, और ऊपर क्या गया, मन और बुद्धि गई ना, शरीर छोड़कर क्या गया, मन बुद्धि, मन और बुद्धि ऊपर गई ना, आत्मा ने, आत्मा, आत्मा का एक्सटेंशन मन बुद्धि था ना, संस्कार था, तो मन और बुद्धि ऊपर गया ना, वो मन मेरे को, वो मन जो था मेरा, जो मेरे साथ था, जो ऐसा वो बॉडी का रूप में ही था, क्योंकि उसकी बॉडी में रहते बॉडी की शेप हो जाती है, जैसे पानी की शेप कैसे होती है, जिस बर्तन में डालो उसमें रह जाती ना, तो जब आत्मा जब इस शरीर में आ गई तो आत्मा के अब जो है आत्मा ने क्या किया, जब आने के बाद बुद्धि को तो यहीं रखा किंतु मन को सारे शरीर में फैला दिया, और जैसे जैसे मन बढ़ता गया वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती गई, क्योंकि सारी एनर्जी जो बॉडी ने भेजी सेल्स में किसके थ्रू भेजी, मन के थ्रू, है ना। तो जैसे जैसे मन के थ्रू फिजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी जाती गई और पेट में से खाना आता गया, शरीर बढ़ता गया, और बढ़ता गया तो मन भी बढ़ता गया। तो अब मन, मेरे मन में क्या है, अभी बॉडी की एक सेल है, और उस सेल में कुछ भी होगा तो क्या पता लगेगा, मन को पता लगेगा, मन के थ्रू आत्मा को, आत्मा के थ्रू फिर दिमाग को पता लगेगा, ठीक बात है। तो इस तरह से है। अब ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आपको हमारा मन बुद्धि गंदा कैसे हुआ, बदली कैसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं बदली कैसे। तो ये आत्मा बुद्धि और मन, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जब गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो कहते हैं गर्भ में उसको सजाएं मिलती है, गर्भ जेल होती है, थोड़ी सी जगह में, जैसे किसी को सजा देते क्या करते हैं, किसमें रखते हैं, किसी को बड़ी सजा देनी तो कहां रखते हैं उनको, जेल में, और जितना बड़ा अपराध किया उसकी 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 कोठड़ी उतनी छोटी कर देते हैं। नॉर्मली कोठड़ी कितनी होती है, 10x10 की होती है कुछ कोठड़ियां, जो बड़ा अपराध करते हैं उनकी कोठड़ी कितनी, 6x6 की होती है, 6x7 की होती है, 6x7 फुट ऊंची और 6x6 और 7 फुट की होती है। जो होते हैं ना जैसे कैदी जो होते हैं, खतरनाक कैदी होते हैं उनकी, जो मतलब जो स्पेशली जो ऐसे होते हैं जो मर्डरर्स होते हैं, जो कातिल होते हैं, या जो देशद्रोही होते हैं, उनकी सजा उनके एरिया उनके अंदर झोपड़ी उनकी कोठरी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ वो लेट सके, है ना, और छत पे भी मतलब बस इतना ही कि बस हाथ भी ऊपर पूरा अच्छे से ना कर सके, ठीक है, अंगड़ाई भी पूरी ना ले सके, ठीक है, इतनी कोठरी होती है, बिल्कुल छोटी सी 7 फुट ऊंची कोठरी होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सके, है ना। हवा का रास्ता भी बहुत छोटा सा होता है, चूहे का बिल जैसा रास्ता होता है हवा आने के लिए, बाकी पूरा पैक होता है ताकि सिर्फ जिंदा रहे, सांस ले सके, और पानी पीने को देते, रोटी खाने को देते, सूखी रोटी, है ना। तो ये ऐसी जगह पेट में होती है ना, हाथ पैर भी ऐसे कैसे होते हैं, हाथ पैर भी चला ना सके बच्चा ना, ऐसा तो वहां पर कैसे सजा, मतलब उसको सजा मिलती है, पानी भी कैसा गंदा पानी, सांस भी कैसा, है ना, तो सब कुछ गंदा, वहां सजा अच्छी, मतलब आत्मा बहुत अपने आप को जेल में महसूस करती है, तो वहां पर सब पाप उसे कटते हैं, जैसे अंदर कहते हैं आत्मा महसूस करती है और माफी मांगती है भगवान से कि भी तुम जो है आगे से मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, आगे मैं जैसे कहोगे वैसे करूंगी। तो बाहर आने के बाद क्या करती है बच्चा क्या करता है, बाहर आने के बाद क्या आवाज करता है, वहां हुआ मना, वहां की बात वहां रही, ठीक है, अभी यहां की बात करेंगे, ठीक है, कहते ना ऐसी आवाज करता ना, वहां करता ना, वहां मना, वहां की बात वहां, वहां का वायदा वहां रहा, अभी यहां तो नई दुनिया आ गई, नई दुनिया में नया काम करेंगे, है ना। तो बच्चे को, पर बच्चे को आप देखें, जैसे बच्चा होता है एक महीने का बच्चा देखें तो कैसा लगता है आपको देखने से, बच्चे के मुख से देखो, पैरों से देखो, उसकी सारी बॉडी कहीं से भी देखो तो कैसा लगता है बच्चा देखने से, बच्चे के हर अंग से क्या महसूस होता है, पवित्र नहीं पवित्र लगता, पैर भी देखो तो पैर खराब नहीं लगते, बच्चा बेशक काला भी हो किंतु बच्चा कैसा लगता देखने में, चेहरा देखो उसका तो लगता है इसको पवित्र लगता है बच्चा, एकदम पवित्र महात्मा जैसा लगता है, एकदम ज्ञानवान लगता है बच्चा देखने से, शक्ल देखो तो कैसा लगता है, ज्ञानवान, बुद्धू नहीं लगता है, कि बुद्धू तो बुद्धू आदमी, डल आदमी कैसा होता है, डल नहीं लगता है, ज्ञानवान लगता है, पवित्र लगता है, शांत, दूध पी लिया फिर चिल्लाता नहीं, कुछ कहता नहीं, खेलता रहेगा, अपने आप ही खेलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, अपने आप से बातें करता रहेगा, शांत, सबसे प्रेम, सबको देखेगा सबको मुस्कुराएगा, ये नहीं कि अपनी मम्मी को खाली देख के, सबको देख के मुस्कुराता है, सुख बहुत है उसके पास, है ना, और आनंद भी बहुत है, और शक्तियां परखने की शक्ति भी है उसको, ये मेरी माँ है, है ना, दूध मुझे इससे पीना है ना, निर्णय करने की शक्ति भी है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति भी उसके अंदर है, समेटने की शक्ति भी है, सहन करने की शक्ति भी है, सामना करने की शक्ति भी है, समाने की शक्ति भी है, सहयोग करने की शक्ति भी है, ताकत भी बहुत है उसके अंदर, है ना, नहीं माँ उसके थप्पड़ भी मार दे तो क्या करेगा, अगली बार उसे माँ की तरफ देखेगा नहीं तो भी माँ से प्यार करेगा, नहीं ऐसे कोई भी उसको मार भी देगा तो क्या करेगा, तुरंत भूल जाएगा ना, या याद रखेगा इसने मेरे को थप्पड़ मारा था, बड़े बच्चे को थप्पड़ मारा तो याद करेगा, छोटा बच्चा कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो मतलब ये जो सातों एनर्जी है वो सातों एनर्जी उसके चेहरे से नजर आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चे में मन होता है क्या, छोटे बच्चे मन होता है क्या, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प होते हैं क्या, क्या समझते हैं आप, होते हैं क्या, नहीं, मन उसके अंदर होता है किंतु विकसित नहीं होता है। बच्चे को याद रहता है इसने मेरे को थप्पड़ मारा था, इसने मेरे को ऐसा किया था, बच्चे को डर लगता है, सांप से डर लगता है क्या बच्चे को, मेंढक से, बिजली के स्विच से, किसी से घृणा होती है क्या उसको? पेशाब करता है, पेशाब पेशाब और एक तरफ पेशाब पड़ा हो एक तरफ पानी पड़ा हो, उसको दोनों क्या समझता है? वो एक समान नहीं समझता है, पेशाब में भी खेलना शुरू कर देता है, उसके सामने सांप जाएगा सांप को पकड़ लेगा, ठीक है, और मेंढक को पकड़ लेगा, आप मेंढक को नहीं पकड़ सकते, वो मेंढक को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेता। मैंने तो कई बार बच्चों को देखा, छोटे बच्चे होते ना ऐसे, वो भी तो मेंढक की तरह चलते हैं ना, और जाते जाते मेंढक को पकड़ लेते हैं, कॉकरोच पकड़ लेंगे और मेंढक को पकड़ के सबका चूमा निकाल देंगे, वो मेंढक बेचारा कुछ नहीं कर सकता उसके सामने, वो मेंढक समझता ये बड़ा मेंढक है मैं छोटा मेंढक, तो समझता ये बड़ा मेंढक है तो इसको ज्यादा ताकत है इसके पास ना, वो भी तो मेंढक जैसा ही होता है ना, चल लेता था मेंढक ही लगता है ना देखने में तो नहीं। तो मैं तो बच्चों को देखा सांप को ही पकड़ते देखा है, हमारे घर में सांप के बच्चे बहुत निकलते थे, हमारा घर जो था उस पहले तो सांप के बच्चे निकलते थे, मेरा छोटा ब्रदर जो था ना उसने एक बार सांप को, इतना बड़ा सांप था उसको ही पकड़ लिया और उसके मुंह के पास से पकड़ लिया, अब मुंह के पास से पकड़ लिया उसके गर्दन के आसपास कहीं ऐसे पकड़ा मतलब, तो उसने काटा नहीं उसको, फिर बाद में उसको छुड़ाया है, डरा के छुड़ाया। डराने वाला कौन, हम ही तो डराते हैं ना बच्चे को, ये सांप है काट लेगा, ऐसा है, बिजली का स्विच है, तो वो जो है उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं, वो सातों एनर्जी से भरपूर है, जब पैदा हुआ तो सातों एनर्जी से भरपूर है ना, इसे सबको प्यारा लगता है, किसी को भी वो खराब नहीं लगता है, किसी का बच्चा भी क्यों ना हो, राइट। अब उसको छठे दिन से जब पैदा होता है उसकी माँ क्या करती है उसको बोलना, उसकी माँ उसका मान लो नाम रखती है, छठे दिन कौन सा नाम रखती है, आप ही नाम रख दो, कोई नाम उसका रख दो, क्या नाम रखना है उसका, है बंटी, चलो बंटी रख दिया। अब उसकी माँ उसको बोलती है बंटी, है ना, अब बंटी बोलता है बच्चा सोचता है किसको बंटी बोल रही है, पहले उसको समझ नहीं आता किसको बंटी बोलती है ना, फिर उसकी माँ उसकी नाक पकड़ के बोलती बंटी, फिर उसके यहां से पकड़ के बोलती बंटी, फिर यहां से पकड़ के बोलती बंटी, नहीं सारे मिल जो भी आता है उसको बंटी बंटी करते हैं, तो समझता पता है कि उसको बंटी बंटी कर रहे हैं लोग ना, है ना, नहीं ऐसा होता। तो फिर उसको नाक पकड़ के जब बोलते हैं, मुख पकड़ के बोलते हैं, यहां से पकड़ के बोलते हैं, बोलते शायद उसको बुद्धि में आता शायद मेरे को ही बात कर रहे हैं, है ना, तो उसकी बुद्धि में पहली बार, पहले तो अपने को आत्मा ही समझता है वो, है ना, कि तो अब उसकी बुद्धि में पड़ता है कि मैं कौन हूं, ये बंटी हूं, ठीक है, तो बंटी बुद्धि में बैठ गया, अभी कौन बैठ गया, बंटी बुद्धि में बैठा तो एक मेमोरी बन गई अंदर, मैं बंटी हूं, ठीक है, राइट, बंटी हो जाता है, फिर उसकी माँ बोलती है मैं तेरी माँ हूं, ये तेरी चाची है या तेरी बुआ है ना, याद दिलाती है मैं तेरी माँ हूं, माँ बोलो माँ, मुख से बोलते माँ, ऐसे मुख से उसको वोट छुटा के दिया माँ मम्मी, है ना, ऐसे बोलते ना पापा, ये पापा ऐसे करते ना, तो बच्चे के मन में फिर बैठता है कि ये मेरी माँ है, तो फिर बुद्धि में कौन बैठ गई, ये माँ बैठ गई, ठीक है, और एक मेमोरी और बन गई, ये माँ है, फिर एक पापा, तो एक पापा भी बन गया, यहाँ पर बैठ गया मोटा, मोटी मम्मी मोटा पापा, ठीक है, फिर ये एक मेमोरी और बन गई, ठीक है, राइट। फिर इस तरह से फिर और भी भाई हैं, है ना, भाई के बारे में बताती है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तो वो भी बुद्धि में आकर के और एक मेमोरी बन गई, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ठीक है, राइट। फिर बच्चा और बड़ा होता है, फिर बच्चे के मन में डाला, अंधेरे में भूत होते हैं, है ना, बच्चा डरता रोता दूध नहीं पीता ना, तो क्या करते हैं उसको, अंधेरे में क्या है देखो भूत आ जाएगा, है ना, है ना, तो भूत उसको पता नहीं भूत क्या चीज होती है, फिर तो डर बिठा देते हैं उसको ना, तो एक भूत आ गया, ठीक है, बुद्धि में भूत आ गया और मेमोरी बन गई भूत की, है ना, फिर सांप की, सांप है काट लेगा, ये ऐसा है, साधु बाबा जो आते हैं क्या करते हैं, इनके भाई झोला होता है ना, थैला होता है, उसमें बच्चों को उठा के ले जाते हैं, है ना, डरते नहीं है बच्चे डरते नहीं, किंतु बच्चों को डरना सिखाया जाता है, ठीक है, एक और नई मेमोरी बन गई, है ना, ये साधु बाबा चोर होते हैं, ठीक है ना, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, एक नई बात और बता दी इन्होंने, है ना, है ना, तो ये एक और मेमोरी बन गई, ठीक है। फिर बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में जाता है, स्कूल के हिसाब से फिर उसको और बातें बताई जाती हैं, टीचर होते हैं, है ना, फिर वो यहां बुद्धि में और बैठ गए, फिर एक और मेमोरी बन गई। अब जो बच्चा जो जैसे अब बच्चा मान लीजिए अब एक साधु बाबा आया है ना सामने झोला लेके, तो बच्चे को देखने से उसको अब मेमोरी में है कि साधु चोर होते हैं, उठा के ले जाते हैं बच्चे को, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा साधु के प्रति, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया ना, और भावना भी उसको देख के वैसी आएगी, उसको देख के और वैसे संकल्प उठेंगे बच्चे को, है ना, और फिर वैसा ही उसके मुख से वो क्या करना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, साधु को देखकर रोना शुरू कर देगा। सांप के अंदर मैं सांप के बारे में मेमोरी बिठाई तो सांप के बारे में भी यही है, सांप को देख के उसकी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा, भावना भी चेंज होगी, संकल्प चलेंगे और फिर रोना शुरू कर देगा, राइट, या बोलना शुरू, मम्मी मम्मी सांप, मम्मी सांप, है ना, मम्मी चोर, मम्मी चोर, नहीं फिर उसके पापा उसको सिखाते हैं ना, थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया तो बच्चा क्या करता है, देखता है माँ को, बाप पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, पिताजी ये कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक नई मेमोरी बन गई है ना गुस्से के प्रति, है ना राइट। फिर उसके वैसे एटीट्यूड बन गया तो वो भी गुस्सा करना शुरू कर देता है ना? फिर स्कूल, फिर जो है बच्चा, जैसे कई बार क्या होता है 3-4 साल का बच्चा हो गया ना, अकल तो होती नहीं उसको, बच्चा बोलता है कोई दरवाजे पे कोई आता ना, कोई उसका दोस्त आता तो पापा क्या बोलते हैं कि बेटा जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है, है ना, तो क्या बोलेगा बच्चा, तो ये बोलेगा ना पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, नहीं उसको अकल थोड़ी ना कि पापा सच्ची बोला ना, सिर्फ पापा ही तो, पापा ने कहा पापा घर पे नहीं है, तो झूठ बोलना भी कहां, किसने सिखाया उसको, तो मतलब वो झूठ बोलना भी सीख गया है ना। तो जो सब बातें मम्मी रो के सिखाती है, मम्मी रो करके नखरे करके पिताजी को मनाती है ना, पिताजी को बस करती है ना, तो पता ये बहुत अच्छी बात है, रो के बहुत अच्छा काम हो जाता है, रो के सब काम चल जाते हैं ना, नहीं वो इम्प्रेस हो जाता है, जो चीज इंप्रेस होती है उसकी मेमोरी में सेट हो जाती है, ठीक है, वो सब मेमोरी में सेट होता जाता है, फिर वैसा एटीट्यूड बच्चे का बनता जाता है, फिर उसके बाद वैसे इमोशंस, वैसे ही थॉट्स चलते हैं, और वैसे ही फिर कर्मेंद्र को आदत पड़ती जाती है वैसा ही करने की, पापा बार बार मुंह बनाते हैं, मम्मी कैसा मुंह बनाती है ना, भाई कैसा मुंह बनाता है, फिर वैसा ही देख देख के, वैसा ही देख देख के बच्चा भी वैसा ही मुंह बनाएगा, वैसी आंखें करेगा, वैसी आंखें, मम्मी आंख दिखाती है, पापा, बच्चा भी आंख दिखाना शुरू कर देता है ना। तो इस सब की सब चीजें जो है कहां से आई, फिर जब स्कूल में जाता है, टीचर स्टूडेंट्स और वो बुद्धि में आ जाते हैं, फ्रेंड्स है ना, बच्चा और बड़ा हुआ और दोस्त मिल गए है ना, फिर वैसी और मेमोरीज बन गई, फिर उसके बाद और 11 साल का हो गया, फिर हार्मोन निकलने शुरू हो गए, लड़के या लड़की में हार्मोन निकलते 11 साल की उम्र में, तो उसके अंदर वो बड़ा होने लगता है, तो वो हार्मोन्स के हिसाब से जो उसको फीलिंग्स आती हैं वो मेमोरीज अंदर आ जाती हैं, है ना, वो अंदर स्टोर हो गई, फिर उसके हिसाब से और फिर आगे स्कूल में गया, और बच्चे मिले, और टीचर मिले, है ना, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, फिर और दोस्त बने, उसके हिसाब से वो मेमोरीज बनी, फिर वैसे एटीट्यूड बने, फिर वैसी भावनाएं बनी, है ना, फिर वैसे थॉट्स चलते हैं, है ना राइट। और फिर बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई, है ना, शादी हो गई तो कौन आ गई, अच्छा बंटे की बबली आ गई, ठीक है, तो अच्छा तो बबली आ गई, ठीक है, तो उसकी बीबी आ गई, है ना, फिर उसकी बीबी की मेमोरी बन गई, ठीक है, और फिर उसके बच्चे आ गए, है ना, 2 बच्चे आ गए, है ना, हाँ जी अच्छा, फिर बबलू डब्लू आ गया, नहीं ठीक है, फिर उसकी मेमोरीज आ गई, नहीं फिर वैसे एटीट्यूड बन गए, है ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बिजनेस शुरू हुआ, फिर बिजनेस पार्टनर हुए और बुद्धि में आ गए, है ना, फिर जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती गई, है ना, नहीं वो तो खैर बड़ा हो गया ना, बड़ा होता जा रहा ना जैसे दिन पे दिन, तो ऐसे के वैसे चीजें अंदर भरती चली गई, ठीक है, 35 साल का हो गया ना, जब तक पूरा भर गया उसका, बुद्धि पूरी भर गई, तो अब ये बुद्धि ऐसी भर गई, अब वैसे ही, अब ये जो स्मृतियां बनी, स्मृतियां ही संस्कार है, मेमोरीज है ना, ये संस्कार है, ये जो मेमोरीज हैं ये संस्कार है, तो ये बुद्धि, ये मन और ये मेमोरीज जो बन गई वो संस्कार। अब कोई भी चीज वो देख, कोई भी चीज जब बुद्धि से वो डिसीजन लेता है, पहले संस्कार आड़े आते हैं, अब बुद्धि से डिसीजन लिया मैं आज से स्मोकिंग नहीं करूंगा, ठीक है, किंतु संस्कार बीच में स्मोकिंग करने का है, 15 साल से है स्मोकिंग करने, तो संस्कार उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। किसी का अच्छा संस्कार है, मान लो किसी का संस्कार अच्छा है, तो क्या करेगा, कोई बुरी बात करने की मन में आ गई तो बुरा संस्कार क्या बन जाएगा, दिल में आया कि मैं ये गलत काम करूं, कि तू अच्छा संस्कार क्या करेगा, उसको वो करने नहीं देगा, बुरा काम करने नहीं देगा। जैसे अभी बुरे संस्कार क्या कर रहे हैं हमको, अच्छा काम करने नहीं दे रहे हैं, 1000 तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, 1000 तरह की बातें मन में आती है, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बायसेस किसने आपको मन में भरा हुआ पहले से, वो आपको तंग कर रहा है। अब योग लगा रहे, योग में अनुभव क्यों नहीं हो रहा, अब आपसे पहले ऐसे व्यक्ति से 35-40 साल का आदमी हो गया, 45 साल का, 50 साल का हो गया, अब ऐसा आदमी यहां पर ब्रह्मा कुमारी में आया, ठीक है, अब इसी वजह से देखो एनर्जी कम, अब 8 अंग है ना, 8 अंग में से 1 अंग जन्म से, मतलब एक एनर्जी बचपन से कमजोर थी, पहले से आत्मा में से पहले कम थी, तो क्या हुआ उस अंग में वो एनर्जी, मानो हार्ट है आपका, तो हार्ट में एनर्जी कैसे पहुंचेगी, लव पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही कम था, जन्म से ही कम था, अभी जैसे बड़े होते जा रहे लव कम पहुंच रहा है, तो लव कम पहुंच रहा है तो क्या होगा, वहां पर एंडोथेलियम पे डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है तो वहां कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है, और जैसे जैसे और बड़े हो गए तो और ज्यादा ब्लॉक हो गया, लव और कम हुआ रहा, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी आर्टरी बंद हो गई, है ना, इस तरह से हार्ट की बीमारी हो गई, किसी और को लीवर की हो सकती है, किसी और को लंग्स की हो सकती है, जो अंग जन्म से कमजोर, जिसमें मतलब जिस जोन सी एनर्जी आत्मा कम लेकर के आई थी, मान लीजिए इस जन्म में मैंने या पिछले जन्म में मैंने, मान लीजिए मैंने सब चीजों का बहुत अच्छा प्रयोग किया, ज्ञान भी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर था, क्रिटिकल लेवल बना जैसे 33% मान लो है, तो मेरे पास शांति, प्रेम, खुशी, शांति थी, ज्ञान भी था, पवित्रता भी थी, शांति भी थी, खुशी भी थी, आनंद भी था, किंतु प्रेम जो था ना वो 33% थोड़ा कम था, क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में थोड़ा सा सस्पेक्ट रहा, बचपन के अनुभव कहो, जवानी के अनुभव कहो, जिससे भी प्रेम की फीलिंग थोड़ी रखी उसने मेरे को धोखा दिया, तो मेरी फीलिंग क्या हो गई प्रेम के प्रति, एक नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव हो गया। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम से बात करे मुझे क्या लगे, नहीं ये व्यक्ति प्रेम से बात कर रहा जरूर इसका मतलब कोई गलत होगा, फिर मुझे धोखा देगा या धोखा देगी, है ना, तो क्या होगा, मैं डरूंगा बात करने से पहले, अवॉइड करूंगा, नहीं मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी। तो वो फीलिंग के कारण मेरा, जब मैं पिछला शरीर छोड़ के आया, इस शरीर में आया गर्भ माता के गर्भ में, तो मेरा हार्ट जन्म से कमजोर बना, और जन्म से कमजोर बना तो क्या हुआ, उसकी दीवारें एंडोथेलियम कमजोर बनी। अब एंडोथेलियम कमजोर है तो शुरू में 1-2 साल की उम्र से ही धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होने लगी, तो वो जो है एंडोथेलियम जन्म से कमजोर थी, तो फिर जो है अभी थोड़ा सा कुछ कहता है ना, थोड़ा सा सबकी एंडोथेलियम पे चोट नहीं पहुंचती उस बात का, कि तो मेरी एंडोथेलियम बचपन से, क्योंकि लव कम मिला ना, पवित्रता भी उसी रेशो में थोड़ी 2-3% कम थी, तो क्या हुआ, लव कम मिला तो क्या हुआ, शुरू से ही एंडोथेलियम थोड़ी सी बात से डैमेज हो जाता था, थोड़ी सी बात, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा ना तो इनका तो डैमेज हो गया, आपका ठीक ठाक है क्योंकि आपका, आपके अंदर लव काफी है, आपने सह लिया, इन्होंने सह नहीं पाए, तो आपका डैमेज हो गया, आपको डैमेज नहीं हुआ, आपका डैमेज हो गया, इनका डैमेज नहीं हुआ, नहीं जैसे आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई इसकी इनकी नहीं हुई, वातावरण दोनों के जैसा ही मिला हुआ है, बच्चे दोनों के कॉमन ही है ना, बच्चे तो है ना, और भी वातावरण कॉमन ही है ना, किंतु आपकी नहीं हुई, इनकी हो गई, तो क्यों हो गई, क्योंकि पिछले जन्म से लव का फ्लो कम था, आत्मा लेके ही कम आई, फिर इस जन्म में भी लव का बिजनेस कम रहा, मतलब वही बचपन से नेचर रही, तो लव का फ्लो ओवरऑल कम रहा। समझ में आ गई ये बात? यस, समझ में आई ये बात? प्रदीप कुमार को समझ में आई है जी? इमोशन तो एक मन की वो है ना, लव तो एक एनर्जी है, इमोशन एनर्जी थोड़ी ना, इमोशन इज ए मीडियम जिसके थ्रू लव मैनिफेस्ट करता है, राइट? नहीं, वो लव भी मतलब कहां रहता है, लव रहता नहीं है, लव मतलब थोड़ी सी बात में ही, सपोज आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और पत्नी थोड़ी सी कोई बात कह दी तो क्या होगा, प्यार की फीलिंग खत्म हो, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, इरिटेट होना शुरू हो, बच्चे ने थोड़ी सी बात की, आप प्यार भले करते हैं, बच्चे को प्यार करते, बच्चे की थोड़ी सी बात टॉलरेट नहीं कर सकते, तो बच्चा कहेगा मुझे ऐसा आपका प्यार नहीं चाहिए, पत्नी बोल देती मुझे आपका ऐसा प्यार नहीं चाहिए, थोड़ी बात में इतना गुस्सा कर लेते हो, वैसे बात मत किया करो आगे से, पत्नी बोलेगी नहीं बोलेगी, बोलती है ना, आज के बच्चे बोलते हैं ना, तो अभी तो प्रॉब्लम हुई ना, इसी यही जनरेशन जो आई ना, 1970 के बाद जो जनरेशन है उन्हीं की प्रॉब्लम है सारी, 60 के बाद जो जनरेशन है उन्हीं की टेंशन है ज्यादा, उसमें बीमारियां बढ़ी हैं, उसके पहले बीमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये हालत है। जब ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी में आया तो क्या होगा उसको, नहीं उसको पूछा कि तुम कौन हो तो क्या बोलेगा वो, अब बताओ, वो अपने अंदर देख रहा है कि मैं कौन हूं, तो समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं, अपने अंदर देख रहा बुद्धि में मैं कौन हूं, तो कभी कहता है कि मैं तो बंटी हूं, है ना, कभी कहता है मैं तो फला का बच्चा हूं, उसका बच्चा हूं, कभी कहता है मैं बिजनेसमैन हूं, कभी कहता है मैं ये कर, इतना प्रॉपर्टी मेरे पास है ना, कभी कहता है मैं 2 बच्चों का बाप हूं, हमने उसको ना पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, हमने पूछा तुम कौन हो, हमने उसको ये थोड़ा ना पूछा तुम कौन बिजनेसमैन हो क्या, हमने उसका प्रोफेशन तो नहीं पूछा ना, हमने पूछा तुम कौन हो, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा ना उसको, जब अपने अंदर झांकता है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा तो छुपी हुई है, आत्मा एक छोटा सा बिंदु है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा, बहुत मोटे मोटे अंदर बैठे हुए, उससे मोटे मोटे बिंदु अंदर बैठे ना, काले 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 साफ नजर, सत्युग कलयुग में काले काले नजर आते हैं, बाकी नजर नहीं आते हैं, कलयुग में देखो काला रंग बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पहन के ना, जो जितने भी फिल्म स्टार होते काले कपड़े पहन के आते ना, लोग कहते हैं वह क्या स्मार्ट है, आजकल रामलीला देखते ना बच्चों को, आजकल रामलीला दिखाओ ना, राम और रावण का युद्ध दिखाते ना, तो बच्चे बेटा कौन सा अच्छा एक्टर लगा, कहता पापा रावण बहुत जमता, बहुत डैशिंग है, बेटा राम के बारे में क्या विचार है, पापा राम तो बेकार एक्टर है, क्या वो सारा टाइम रोता रहता है, तो राम से इंप्रेस नहीं होते बच्चे आजकल, रावण से इंप्रेस होते हैं, डैशिंग बोलते हैं उसको, है ना, देखो क्या बढ़िया, देखो उसको चलता है तो क्या चलता है, बोलता है क्या डायलॉग, डिलीवरी कितनी बढ़िया है, है सुपरमैन, राम तो क्या करता है, राम तो सारा टाइम रोता रहता है, मतलब उसकी देखो बीवी उठा के लेके तो भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो अभी देखो कहता माफ कर दो, ये कर दो, चलो उसके बाद भेज रहा है, तुरंत जाना चाहिए ना, इतना हथियार है तो सब जाना चाहिए, करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। सेना भी कुछ और नहीं समझाई बंदा तो उसको बच्चे को मजा, नए बच्चों को मजा नहीं आता रामलीला देखने का, ठीक है, मजा आता है तो रावण, रावण पसंद आता है उसको, ठीक है। हाँ देखो 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 अच्छा है ना, देखो ये से इसे कहते ना पावर, उठाला है ना देखो तो रावण से सच, मुझे मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, फैक्ट, मैंने कई बच्चों से सुना, मैंने ऐसे कई बार मैं ऐसे पूछ रहा था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कई बार, नहीं यहाँ पे भी आते हैं तो उसे पूछता, बेटा रामायण देखते हो आप? हाँ देखते हैं अंकल, देखते हैं। कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा करेक्टर आपको अच्छा लगता है? कहते हैं अंकल रावण, उसका रावण का बहुत अच्छा लगता है, रावण बहुत इंप्रेसिव है। मैं राम कैसा लगता है? कहते राम तो बस रोतू राम है। विदेश में पता क्या बोलते हैं, भारत में, भारत के कहते हैं भारत, तुम्हारे भगवान दोनों कौन है? एक राम है, एक कृष्ण है ना, एक राम को कहते हैं कृष्ण, कहते हैं एक चोर है, एक कमजोर है। कृष्ण को चोर दिखाते हैं ना, भी चोरी करता रहता है, कभी मक्खन चोरी करता है, कभी कपड़े चोरी करता है, और दूसरा कमजोर, उसकी सीता को उड़ा के ले जाते हैं रावण, है ना। तो कहता है एक चोर है, एक कमजोर है, तो ये आपके भगवान है ना। तो अब देखिए क्या हालत है ना, है जी, क्या करें? तो अब देखिए इसमें क्या करें, क्या करें ऐसे को, इसलिए वो कंफ्यूजन है। उससे पूछा तुम कौन हो? पता नहीं। इसलिए ऋषि मुनि ने क्या कहा? नेति, भगवान के बारे में पूछा गया, नेति है ना, नेति माना हम नहीं जानते, ना आती, ना इति, ना इति माना हम ना उसका आदि जानते ना अंत जानते हैं, ना इति, ना इति का मतलब क्या हुआ, ना हम उसका आदि जानते ना अंत जानते हैं। तो ना ऋषि मुनि ने कहा ना हम इति ना अंत, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही कोशिश की ब्रह्म तत्व को याद करने की, भगवान को नहीं जान पाए, ब्रह्म तत्व छठे तत्व को याद करना शुरू कर दिया, उसी को भगवान समझ लिया, है ना। स्थान को भगवान समझते हैं क्या? शांतिमन की पूजा करनी है क्या? शांतिमन की पूजा करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने फिर उस समय ये प्रॉब्लम हो गई। तो अभी हमको अपने आप को जानने के लिए क्या करना, और इसमें गीता में क्या बताया भगवान ने या शिव बाबा ने क्या बताया, और गीता में भी लिखा है ये बात, तो इसमें क्या लिखा है, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, चार बातें भूलनी है, देह, देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, चार बातें भूलने का है, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार। उसमें पांच स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट खत्म होता है तो दूसरा स्टेटमेंट चालू होता है, दूसरा स्टेटमेंट खत्म होता है तीसरा स्टेटमेंट चालू होता है, ऐसा नहीं कि पहला खत्म नहीं हो दूसरा चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देह और देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार। देह का देह तो यही है ना, देह के संबंधी कौन है, हमारे चाचा मामा काका। तो जब मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, देह के संबंध, देह नहीं हूं आत्मा हूं, तो आत्मा के संबंध किससे है, सर्व संबंध परमात्मा से, माता पिता बंधु सखा सब कुछ उसके साथ है। और देह के पदार्थ कौन से है, देह के पदार्थ तो ये सिर्फ सब चीजें जो खाने पीने की चीजें, रखने की चीजें, सोना चांदी। और आत्मा के पदार्थ कौन से है, आत्मा के पदार्थ गुण है, सरलता, नम्रता, धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता, है ना, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, उसके धन है। जिसके पास सरलता है वो सब जगह सक्सेसफुल है, जिसके पास सत्यता है, निर्भयता है, पवित्रता है, अंतर्मुखता है, वो सब जगह सक्सेसफुल है, ऑनेस्टी, आज्ञाकारी है, ईमानदार है, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको कुछ और चाहिए क्या? तो ये आत्मा का पदार्थ है, आत्मा का स्वभाव। और देह के स्वभाव तो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संस्कार क्या है, चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष, जो 10 बच्चे हैं ना वो उसके संस्कार हैं। और आत्मा का जो आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वमाने आत्मा, भाव माना भाव। आत्मा का भाव क्या है, ये 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और संस्कार क्या है, रहमदिल और विश्व कल्याणकारी। मनुष्य का स्वभाव ही रहमदिल है बाई नेचर, रियल स्वभाव क्या है मनुष्य का, क्या है, रहमदिल। और कल्याण करने की भावना हर इंसान में होती है, जैसे भगवान में है ना, ऐसे हर इंसान की भावना जो रियल भावना है वो कल्याण की है। एक इंसान कभी किसी दुखी व्यक्ति को देखे ना, दुखी इवन जानवर को देखेगा ना, तो भी उसका कल्याण करे बगैर, उसको रोटी दे बगैर रह नहीं सकता, पानी पिलाए बगैर रह नहीं सकता, सच्चा इंसान। इंसान की तो बात ही छोड़ो, इंसान को दुखी देखेगा तो उसके लिए जान भी देगा, ये इंसान की नेचर है, रियल नेचर। ऐसा है कि नहीं, मुझे बताओ, ऐसा है कि नहीं? रियल इंसान कभी भी किसी को भी दुखी देख के वहां से क्रॉस नहीं कर सकता है, रुक जाएगा। जानवर नहीं करेगा ऐसा, जानवर तो वहां क्या करेगा, देखिएगा ना, वहां से आगे आगे चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मरा पड़ा है, जिंदा पड़ा है। किंतु इंसान में ये गुण है, कल्याण और रहम का गुण है, जो भगवान का प्रॉपर्टी है, और साथ ये है। तो तो ये जब मैं समझा, अपने को आत्मा समझा तो ऑटोमेटिक, तो पहला है देह और देह के संबंधी कौन कौन है, देह कौन है, बंटी है ना, ये बंटी की मां है ना, मतलब इनको बुद्धि से निकालना पड़ेगा, इनको बुद्धि से भूलना पड़ेगा, ठीक है। और बंटी का पापा है ना अंदर बैठा ना, बुद्धि यहां बैठने की जगह नहीं है अंदर, ठीक है, अंदर रखने की जगह है क्या उनको, तो उनको निकालो बुद्धि से है ना। और उसकी भाई बहन जो अंदर बैठे हैं बुद्धि में ना, और उसके बाद उसके स्कूल के दोस्त टीचर और कौन कौन थे है ना, और दोस्त थे है ना, और उसकी फिर कौन थी साथ में, बबली है ना बबलू, और कौन थे डब्लू क्या था, बबलू डब्लू जो है ना वो भी है ना, इन सबको बुद्धि से निकालना पड़ेगा, ठीक है राइट, सबको निकालना। दे गीता में नहीं लिखा हुआ कि पत्नी को अंदर रखो, ऐसे लिखा क्या पत्नी को अंदर रखो, नहीं नहीं, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल। अब उससे पूछो मैं कौन हूं, अब उसको समझ में आता है मैं आत्मा हूं, राइट, समझ में आ रहा ना आत्मा हूं, अभी बड़ा क्लियर है आत्मा हूं, ठीक है। तो मैं आत्मा हूं ये अंदर से रियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो देह और देह के सर्व संबंध, सर्व पदार्थ, सर्व स्वभाव संस्कार को भूल, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो है ना, तो मामेकम फिर है कि अपने को, तब यहां पर कौन बैठता है, तब इस बुद्धि में इस दिल में परमात्मा की याद आ सकती, ठीक बात है, अदरवाइज नहीं आ सकती है। मैं एक बात यहां बताना भूल गया आपको, इस बुद्धि को ही दिल भी कहते हैं, मैंने बताया ना आपको शुरू में, इस बुद्धि को ही दिल भी कहते हैं, इस बुद्धि को ही तीसरी आंख भी कहते हैं, राइट, तीसरी आंख, और इस बुद्धि को ही अकाल तख्त भी कहते हैं। अगर बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, सच्ची बुद्धि है, तो अकाल तख्त मतलब मरने का डर बिल्कुल खत्म है। और परमात्मा जो है ना, परमात्मा क्या है, परमात्मा एक बिंदु है ना, और उसका उसका जो तख्त है वो कैसे, उसकी बुद्धि कितनी बड़ी होगी, क्योंकि वो सागर है ना, वो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है ना, तो उसका ये है उसका दिल तख्त। बुद्धि कहो, दिल कहो, तो परमात्मा की बुद्धि क्या है, बहुत बड़ी, अर्थात ये है दिल तख्त, हमारा होता है अकाल तख्त और इनका दिल तख्त है। तो जो परमात्मा, जो आत्मा ज्ञान से भरपूर है, सतो प्रधान है, जिसकी बुद्धि दिव्य है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद भरा हुआ है, वो आत्मा परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान रहती है। और ये जो आठ आत्माएं होती है ना, आठ आत्मा, इसलिए अष्टतनों का गायन है, अष्टतन जो होते हैं ना, आठ जो मुख्य आत्माएं हैं, वो सदा परमात्मा के श्रीमत पर चलती हैं, और उनकी बुद्धि सदा ही ज्ञान से भरपूर, इसलिए वो अष्टतन बनते हैं। और बाकी जो सो रतन होते हैं ना, 100, वो भी परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो भी बुद्धि, वो भी इस पे बैठे रहते हैं दिल तक पर, पेरिफेरी में, साइड में, राइट। तो ऐसी आत्माएं परमात्मा के दिल तक नशीन होती, ठीक है, 108 है ना, इसलिए 108 की माला जपी जाती है, क्योंकि 108 के जो 108 आत्माएं ऐसी होती हैं जो के सदा परमात्मा की श्रीमत पर चलती हैं और परमात्मा के दिल तक पे, अर्थात परमात्मा के दिल में समाई रहती हैं, दिल माना बुद्धि में समाई रहती हैं, मतलब 108 को परमात्मा याद करता है क्योंकि वो अच्छे हैं। ये भाई देखो सो रहा है क्या, परमात्मा ऐसे बच्चों को याद करता है क्योंकि परमात्मा की डायरेक्शन पे आज्ञाकारी बच्चे हैं, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है, उनकी माला जपती है, राम 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 करते रहते ना। और बाकी जो होते हैं वो परमात्मा के, क्योंकि दिल तक पे नहीं रहते, वो क्या करते हैं, वो बाहर रहते हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पास तो होते हैं किंतु बाहर रहे। तो 16108 आत्माएं जो होती है ना ऐसी, वो बाहर रहती हैं, 16000 आत्माएं है ना, फिर बाकी 9 लाख या 9 लाख, और उसके बाद 2 करोड़, और उसके बाद 660 करोड़, राइट। इस तरह जब जब परमात्मा जाता है, शिव की बारात जब जाती है, क्या होता है, जब शिव की बारात जाएगी, शिव मतलब जाएगा ऊपर, सबको लेके जाएगा ना, तो उसकी बारात में ये तो होंगे उसके साथी, 800, ये तो साथी होते हैं, और ये जो होते हैं ना 16000, ये होते हैं बराती है ना, बराती समझते हैं, इनको कोई टैक्स नहीं लगता, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि साथ में है ना, साथी हैं, इनको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, जो बताया ना सजाएं, आज मुरली में से सजाएं मिलती है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी सजाएं इनको खानी पड़ती है, बाकी 9 लाख को भी थोड़ी थोड़ी सजाएं खानी पड़ती है, राइट। और उसके बाद 2 करोड़, त्रेता के अंत की आबादी होती है, उनको भी थोड़ी खानी पड़ती है। तो ये बराती, ये घराती, ये घरवाले होते हैं, ठीक है, घराती है ना, और बाकी क्या होते हैं, धराती। धराती मतलब जबरदस्ती पीछे आने वाले, लंगड़े लूले सब आते हैं, है ना। दिखाते शिव की प्रात में कैसे दिखाते हैं लोग, सब लंगड़े लूले है ना, जिसके कोई मतलब जिसके कोई धारणा नहीं, कोई पालना नहीं, फिर भी चिपके रहते हैं, वो चिपके वाले साथ में आते हैं बाद में, ठीक है, डंडे खा के आते हैं पीछे, सबको जाना तो ऊपर है ना, तो शिव की बरात ऐसे जाती है ऊपर, राइट। समझ में आया आपको, कैसे जाना है, साथी बन के जाना है या बराती बन के जाना है, बताओ मनमानी जी है, क्या कह रहे हो, बाबा को नहीं लेना आपको लेना है, आप क्या बनना चाहते हो, है जी, आठ लोग क्या बात है, तो भाई ताली बजाओ भी, आठ में आ रहे मनमानी जी, देखो आठ में आने वाले, ठीक है। तो ये देखो आपके अपने पुरुषार्थ पे है, जितना चलेंगे एक्यूरेट उतना ही क्या होगा, उतना ही हम नजदीक आएंगे, ठीक है, नेचुरल बात है ना। आप अपने आपके भी अगर आपकी जो कोई आपके कहने पे कोई माने, कोई आपका कहना मानता है तो क्या होता है, आपके भी नजदीक आ जाता है ना, और जो नहीं मानता कहना तो क्या होता है, दूर हो जाता है ना अपने आप। तो ऐसी परमात्मा की बात है, जो परमात्मा कहना मानता है उसके नजदीक उतना ही नजदीक है, और जितना नजदीक है उतना ज्यादा बात भी कर सकता है। जैसे सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी जीरो है, मेरी दो है तो मैं बात कर सकता हूं ना, चार है मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख किया मन में, मेरी भी एक हो गई, दो हो गई, अब बात कर लो, जीरो से एक की बात हो सकती है ना, दो की बात हो सकती है ना, जीरो शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी है, एक ब्रह्मा बाबा की है, मेरी दो हो तो बात हो सकती है ना, मेरी पंद्रह हो उसकी एक हो, जीरो एक, तो फिर कैसे बात हो ही नहीं सकती है ना। तो बात करना बिल्कुल ऐसे ही बात होती है जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं, ऐसे बात होती है, सिर्फ मुख से नहीं करते, संकल्पों से चलती है, विचारों से चलती है, एकदम प्रूफ के साथ होती है। एक बात मैं और बता दूंगा अभी आपको, गीता का ज्ञान किसने दिया बताओ, गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण। अब ऐसे ही आप समझ लो, है जी, हाँ। अब देखिए जैसे सपोज मैं आपको एक ज्ञान सुना रहा हूं, आप किसको क्या समझेंगे इसको, कि डॉक्टर गुप्ता ने ज्ञान सुनाया, ठीक है, पर डॉक्टर गुप्ता ने सुनाया क्या, मेरे को तो इस ज्ञान का कैब ही नहीं आता था, क्या समझते हैं, इस जो ये ज्ञान मैं आपको सुना रहा ना, ये जब सुनाया ना सब, या सोल माइंड बॉडी मेडिसिन या जो भी बातें आपको बताई, मेरे को इसका क्या खाया भी नहीं आता था। सारा ज्ञान किसने दिया मुझे, स्वयं बाबा ने मुझे सिखाया। अब जो मेरे मुख से सुनेगा उसको शिव बाबा नजर आ रहा है क्या यहाँ पे, वो तो ये समझे डॉक्टर गुप्ता ने दिया है ना। तो ऐसे नाम क्या पड़ा, श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, क्योंकि ब्रह्मा के चेहरे से, ब्रह्मा जब सुनाते थे ना तो उनके यहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई देता था उनके चेहरे से, क्योंकि वो उसका फ्यूचर रूप था, इसलिए वो लोगों ने क्या कहा जब गीता लिखते समय कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने नहीं दिया, शिव ने कृष्ण के या ब्रह्मा के मुख द्वारा ये ज्ञान दिया। अब जैसे ये ज्ञान आप क्या कह समझेंगे, ये जो आपको बता रहे हैं कौन बता रहा है, शिव बाबा बता रहे ना, कि तुम मुख किसका भी लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो गीता का भगवान कौन, जोर से बोलो ना, शर्मा शर्मा के नहीं बोलो, शर्माते नहीं ना, तो ये क्लियर हो गया ना आपको, है ना। तो इस तरह से ये जब चीज क्लियर हुई तो फिर हमारे अंदर जैसे ही हमारी ये चीज ठीक होता ना, जैसे शिव बाबा आया, शिव बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का, तो उससे हमारी मेमोरीज चेंज होती जाती। जब हम उसकी याद में बैठे तो हमारी मेमोरीज क्या होती, मेमोरीज परिवर्तन क्या हो गई, अभी भी मेमोरी थोड़ी परिवर्तन तो हुई ना, मैं कौन हूं, पहले तो बुद्धि में हर समय यही बताता मैं ये हूं, अभी क्या परिवर्तन हो गया, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, है ना, मेरी माता कौन है, मेरी माता ब्रह्मा है और पिता कौन है, शिव बाबा है, है ना, है ना, मेरे भाई बहन कौन है, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, है ना। तो अभी चेंज हो गया ना, परिवर्तन हुआ ना, और जैसे ही परिवर्तन हुआ ऐसे ही हमारा एटीट्यूड बदल गया, है ना। जैसे ये परिवर्तन होता है एटीट्यूड बदल रहा है, नहीं बदल रहा, एटीट्यूड भी चेंज होता, ऐसे ही हमारी भावना भी बदल रही है, ऐसे ही हमारे विचार भी बदल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे धीरे 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 क्या होता जा रहा है, ऐसे अभी हमारे विचारों में क्या आ गया है, हमारे मेमोरीज, एटीट्यूड्स, इमोशंस और थॉट्स बदल रहे, नहीं बदल रहे। तो ऐसे बाबा ने क्या किया, हमारे मन को और बुद्धि को स्वच्छ बना रहा है, ठीक है। धोबी है ना, तो धोबी का काम किया कि नहीं किया, पिछले पांच दिन से धोबी घाट खुला हुआ है ना, देखो है ना धोबी घाट खुला हुआ था, नहीं खुला हुआ था पांच दिन से, तो धोबी घाट में क्या हो रही थी, सफाई है ना, सफाई हुई कि नहीं, है ना, बुद्धि की और मन की दोनों की सफाई हुई ना। तो ये है क्या है गायन, देह और देह के सर्व संबंध, सर्व पदार्थ, सर्व स्वभाव संस्कार को भूल, अपने को आत्मा समझ, क्या याद करो, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो ये विक्रम थे, विक्रम क्या थे, ये मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, पास्ट एटीट्यूड्स, पास्ट भावनाएं, पास्ट संकल्प, बुरे संकल्प जो मन में आते थे, है ना, वो विनाश होंगे और आप क्या बन जाएंगे, पावन सतो प्रधान। ये पावन सतो प्रधान बन गए, आत्मा सातों गुणों से भर गई। और अभी क्या हो रहा है, हमारे हर कर्मेंद्री में, हार्ट में पूरा लव पहुंच रहा है, लीवर में पूरी खुशी पहुंच रही है, लंग्स में पूरी शांति पहुंच रही है ना, इम्यून सिस्टम में पूरी पवित्रता पहुंच रही है, सब कुछ एम्पावर हो गया। समझ गए आप बात अभी, क्लियर, 100% क्लियर इस तरह से। और जब हम पावन सतो प्रधान बनते तो परमात्मा को मिलने के लायक बनते हैं। एक्चुअली जितना जितना हम पावन सतो प्रधान बनते जाते उतना उतना हम परमात्मा को मिलन बनाने के लायक बनते जाते। जैसे किसी ने अनुभव सुनाया था, किसने सुनाया था, आपने सुनाया था ना कि मुझे योग का अनुभव नहीं हो रहा था, तो योग का अनुभव जितना जितना पावन बुद्धि बनती गई, सतो प्रधान बनती गई, उतना उतना क्या हुआ, क्यों बुद्धि रूपी विमान से ऊपर जाते ना। अब विमान में पेट्रोल किस चीज का चाहिए, पवित्रता का, ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्तियों का। जितना अधिक पेट्रोल होगा उतना, जितना रिफाइंड पेट्रोल होगा उतना ऊपर जाएगा बुद्धि, रिफाइंड नहीं होगी तो क्या होगा, नीचे ही रह जाएगा, ऊपर उड़ेगा ही नहीं प्लेन, राइट। तो हम जितना जितनी बुद्धि पावन सतो प्रधान बनती उतना उतना हम ऊपर जाएंगे। तो ये जो मुरली है ना, मुरली, जितना इस मुरली को सुनेंगे, जितना इस मुरली को पढ़ेंगे, तो बुद्धि पावन होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, सोना, सच्चा सोना बनती जाएगी, मन भी क्लीन होता जाएगा। और हम जितना मुरली सुनते सुनते क्या हो जाएंगे, दिन क्या हो जाएंगे, पावन सतो प्रधान हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, फिर मुरलीधर से मिलन बना सकेंगे, फिर मुरलीधर से हम कभी भी मिलन बना सकेंगे, जैसे बैठे और जब चाहे मिलन बनाया, ठीक है। और ये जो कर्म, ये जो हमारा जो है ना, ये जो जहां पे हम कर्म करते हैं वही कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, राइट, कर्म क्षेत्र वो है, वहीं पर रोज महाभारत हो रही है ना, महाभारत होती नहीं होती, सामने कौन कौन खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, दुशासन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, रोज खड़े नहीं खड़े आपके सामने, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जिनसे जिनसे आपको डील करना पड़ता है, जो नीचे ऊपर काम करते हैं, वो सब कौन है, कौरव सेना है ना, आप पांडा, आप पांच हो और कौरव सेना कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। जैसे आप अपने हॉस्पिटल में हो, जो आते हैं लोग आपसे डील करने, जो कंपनी वाले आते हैं, MR क्या करते हैं, कमीशन देने की कोशिश करते हैं, जो सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं वो पैसे देके झूठा सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करते हैं, झूठे काम कराने की कोशिश करते हैं ना, MTP कर दो जी, गलत काम कर दो जी, आप इतने पैसे ले लो जी आप, है ना, तो सब कौन है, कौरव सेना। तो ये कर्म क्षेत्र पर हमारे अच्छे कर्म, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है तो हमारी जीत होगी, किंतु उसकी श्रीमत पे चलने पर। वो जो रोज हमें गीता सुनाया ना, इसे रोज पहले गीता सुन लो, सारा दिन लड़ाई करनी है ना, और सामने खड़े भी कौन है, भीष्म पिता में खड़ा है, हमारे चाचा मामा काका खड़े हैं, लड़ाई किससे करनी है, सामने युद्ध में कौन खड़े हैं, हमारा चाचा, हमारा मामा, हमारा काका, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी मम्मी, हमारे पापा, नहीं, कौन खड़े हैं जिनसे डीलिंग करनी है, हमारे बच्चे, अपने बच्चे खड़े हैं, वो कहते पापा ऐसे कर लो, पापा देखो कितना कितने पैसे कमा लिए, आप क्यों नहीं कमाते, क्या कर रहे हो, मेरे को 2-4 लाख रुपया चाहिए हर साल में, मेरे को आप एक गाड़ी दिला के दो, सब बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, मैं जाता हूं बस में, मेरे को नहीं जाना बस में, नहीं बेटा मेरे पैसे नहीं है, पापा मुझे नहीं पता, देखो वो करता है ना कितने पैसे, डॉक्टर है तो कितने पैसे कमाता है, तुम क्या करते हो, तुम भी पैसे कमाओ ना, तो वो क्या है, कौरव सेना के, कौरव सेना के महारथी है वो, है ना, वो बच्चे नहीं है, कौरव सेना के महारथी है ना, आपको तीर मारते हैं, घायल करते हैं, और बच्चा को देखे घायल हो भी जाते हो, ठीक है, नहीं घायल हो जाते, बीबी बोलती है देखो उससे घर में क्या क्या है, कौन कौन सी गाड़ी, देखो हर रोज गाड़ी बदलता है ना, और आप क्या है? आप वही गाड़ी, एक टूटी फूटी गाड़ी लेके घूमते रहते हो, वो आवाज कम, आवाज ज्यादा करती, चलती कम है ना, मैं तो आपके साथ शादी करके दुखी हो गई हूं ना, नहीं बोलते क्या? अपनी सेना के है ना आप, पता नहीं ठीक है ना, क्या समझे हो, समझे बात को। तो ये कर्म क्षेत्र पर रोज लड़ाई करेगी, वही महाभारत है, महाभारत कहते हैं घर घर में महाभारत लड़ाई हो रही है आजकल ना, क्या कहते हैं घर में बच्चे क्या लड़ रहे थे, क्या बोलते हैं, महाभारत मचा के रखी है। तो ये महाभारत रोज आपको घर में फेस करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, तो याद रखना वो वाली महाभारत नहीं है, यही महाभारत हो रही है ना, ठीक है। घर में भीष्म पिता में होते, कई इतने जिद्दी होते हैं घर में कि तुम कुछ मर्जी कर लो, मैं नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे होते नहीं होते? और आपको उससे प्यार भी है, आपसे बड़ा भी है, रेस्पेक्ट भी उसके प्रति है, फिर भी मारना तो पड़ेगा, मारना उसको नहीं मारना, मतलब उसके अंदर जो बुराई है उसको मारना तो पड़ेगा ना, दृढ़ता से, एकाग्रता से, निश्चय विश्वास से मारना तो पड़ेगा। अर्जुन तो हो ना आप, क्योंकि आपको अर्जुन माना, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, मछली दिखाई नहीं देती, मतलब हमें उसकी बुराई को नहीं देखना, हमें उसकी सिर्फ आत्मा को देखना है, हमें वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है उसको नहीं देखना, उस आत्मा को देखना है बस। ये है मछली की आंख, ये मछली है, शरीर क्या है, मछली, उसमें आंख कौन सी है, यहां तीर मारना है, ठीक है, मतलब आत्मा समझ के बात करनी है, ठीक है, राइट। मछली को तीर मारना माना मतलब आत्मा समझ के बात करना, उसको ये नहीं समझना कि ये कौन है, ये मम्मी है, पापा है, कहीं इसको तीर उठा के मारना शुरू कर दो, ऐसे नहीं मारना है ना कि वहां पे हम सीख के आए तीर मारेंगे आपको, है ना, ठीक है, मतलब उसको आत्मा समझ के बात करना, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, मैं समझता हूँ आज सब क्लियर हो गया होगा, कुछ कंफ्यूजन जो पहले वाले होंगे क्लियर हो गए होंगे, है ना।